नमस्कार भारत, तारीख 23 सितंबर, दिन शनिवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन, दोनों नेताओं ने एक दूसरे को कहा सनकी और पागल। रूस ने कहा स्कूली बच्चे जैसे लड़ रहे हैं दोनों।
если говорить об обмене угрозами, то конечно же это плохо।
लखनऊ में समाजवादी पार्टी का प्रांतीय सम्मेलन, देखना है कि मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव आते हैं कि नहीं।
इस विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि हर जिले से डेलीगेट्स को 15% डेलीगेट्स को पार्सल इशू हुए हैं।
विवेचना में आपको बताएंगे साल भर पहले हुई सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। अमेरिका और उत्तर कोरिया के नेताओं के बीच तीखी हो रही जबानी जंग को रूस ने स्कूली बच्चों की लड़ाई बताया है। रूसी विदेश मंत्री ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि गर्म दिमागों को शांत किया जाए और ये समझा जाए कि ठहर कर विचार करने की जरूरत है। इससे पहले किम जोंग उन और डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे को सनकी और पागल कहा है और भयानक अंजाम भुगतने की धमकी दी है। उत्तर कोरियाई विदेश मंत्री ने कहा है कि उत्तर कोरिया एक और हाइड्रोजन बम का परीक्षण कर सकता है। यूरोपीय संघ के प्रमुख नेताओं ने ब्रिटानी प्रधानमंत्री टेरेसा मे के भाषण का स्वागत किया है। अपने भाषण में टेरेसा मे ने ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने को लेकर जारी गतिरोध को खत्म करने की कोशिशें की हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और यूरोपीय संघ के प्रमुख ब्रेग्जिट वार्ताकार मिशेल बार्नियर ने प्रधानमंत्री मे के भाषण को सराहा है। टेरेसा मे ने ब्रिटेन के बजट वादों को पूरा करने और ब्रिटेन में यूरोपीय संघ के नागरिकों को नई गारंटियां देने की बात कही है। प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने कहा,
आई वॉन्ट टू इनकॉर्पोरेट आवर अग्रीमेंट फुली into UK law।
मैं हमारे समझौते को पूरी तरह ब्रिटानी कानून में शामिल करना चाहती हूं और ये सुनिश्चित करना चाहती हूं कि ब्रिटानी अदालतें सीधे इसका संदर्भ लें, और जब यूरोपीय संघ के कानून को लेकर अनिश्चितता हो तो मैं चाहती हूं कि ब्रिटानी अदालतें यूरोपीय संघ की अदालत के फैसलों का संज्ञान लें ताकि एक रूपीय व्याख्या बनी रहे, और इस आधार पर मैं ये उम्मीद कर सकती हूं कि हमारे दल जल्द ही एक ठोस समझौते पर पहुंच जाएंगे। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने ब्रिटेन की क्रेडिट रेटिंग को और कम करते हुए कहा है कि सरकार की कर्ज कम करने की योजनाएं सही रास्ते पर नहीं हैं और यूरोपीय संघ से अलग होने की वजह से आर्थिक अनिश्चितता का माहौल है। एजेंसी ने यह भी कहा है कि ब्रेग्जिट वार्ता में जटिलताएं सरकार की नीतियां निर्धारित करने की क्षमता को भी प्रभावित करेंगी। ब्रिटानी सरकार के एक प्रवक्ता का कहना है कि मूडीज का आकलन पुराना है। शुक्रवार को ब्रिटानी मुद्रा यूरो और डॉलर की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है। जर्मनी में रविवार को होने जा रहे चुनावों में मुख्य उम्मीदवार चांसलर एंगेला मर्कल और उनके मुख्य विपक्षी मार्टिन स्कल्स चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। दोनों नेताओं ने मतदाताओं से दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी पार्टी को नकारने की अपील की है। चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों में मर्कल की पार्टी को आगे बताया जा रहा है। चांसलर मर्कल ने एक रैली में कहा, देवी और सज्जनों, मैं और हास्ट सीहोफर मुख्य उम्मीदवार जोआशिम हरमन एक बात पर सहमत हुए हैं, जर्मनी का भविष्य सीटियां बजाकर या चिल्लाकर तय नहीं किया जाएगा। पुएर्टो रिको के उत्तर पश्चिमी इलाके में एक बांध में दरार की वजह से दसियों हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। कैरिबिया में इस अमरीकी क्षेत्र के गवर्नर रिकार्डो रोसेलो का कहना है कि 90 साल पुराने बांध में दरार आ गई है और स्थिति बेहद खतरनाक है। अधिकारियों ने बांध के निचले इलाके के दोनों जिलों के लोगों से तुरंत ऊंचाई वाले इलाकों में जाने के लिए कहा है। कुछ लोगों को बसों के जरिए सुरक्षित निकाला गया है। समुद्री तूफान मारिया की वजह से पुएर्टो रिको में भारी बारिश हुई थी, जिसकी वजह से नदियां उफन गई हैं और बांधों में क्षमता से अधिक पानी आ गया है। न्यूजीलैंड के लोग आम चुनावों में मतदान कर रहे हैं। उतार चढ़ाव भरे चुनावी अभियान के बाद प्रधानमंत्री बिल इंग्लिश दोबारा सत्ता पाने के लिए प्रयासरत हैं। माना जा रहा है कि नतीजे आने के बाद गठबंधन सरकार बनने की संभावना ज्यादा है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। अमरीका और उत्तर कोरिया के नेता एक दूसरे को पागल और सनकी कह रहे हैं और भयानक परिणाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। दोनों नेताओं की तीखी होती बयानबाजी को रूस ने स्कूली बच्चों की लड़ाई कहा है और कहा है कि अब ठहर कर सोचने की जरूरत है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लाफ्रूफ ने कहा कि गर्म दिमागों को शांत करना होगा। उत्तर कोरिया और अमरीका के बीच लगातार बढ़ रहे तनाव पर ताजा ब्यौरा सुनिए दिलनवाज पाशा से।
अमरीका और उत्तर कोरिया के नेताओं के बीच जबानी जंग और तेज होती जा रही है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मानसिक रूप से बीमार गैंगस्टर कहा है। इसी बीच रूस ने कहा है कि दोनों नेताओं के बीच चल रही जबानी जंग स्कूली बच्चों की लड़ाई जैसी है। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने कहा है कि बयानबाजी बंद करने का वक्त आ गया है। लावरोफ ने कहा,
если говорить об обмене угрозами, то, конечно же, это
अगर हम धमकियों की अदला बदली की बात करें तो जाहिर तौर पर ये खराब है। हाँ, उत्तर कोरिया के परमाणु सैन्यकरण को खामोशी से देखना अस्वीकार्य है, लेकिन कोरियाई प्रायद्वीप में युद्ध छेड़ देना भी अस्वीकार्य है। यदि ये धमकियां हकीकत बन गईं तो ठीक वैसा ही होगा जैसा हम बात कर रहे हैं। इसलिए हमें गर्म दिमागों को शांत करना होगा और समझना होगा कि रुक कर विचार करने की जरूरत है। हमें किसी तरह के संपर्क बनाने होंगे। लावरोफ ने कहा कि स्थिति को और बिगाड़े बिना हल करने के भी तरीके मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में राजनीतिक प्रक्रिया अपनाने पर जोर है। इसी बीच उत्तर कोरिया ने कहा है कि वह एक और हाइड्रोजन बम का परीक्षण कर सकता है। न्यूयॉर्क में जब संवाददाताओं ने उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री री योंग हो से किम जोंग उन की धमकी के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि ये एक हाइड्रोजन बम परीक्षण होगा जो बहुत ज्यादा बड़ा होगा। गुरुवार को सरकारी मीडिया को दिए बयान में किम जोंग उन ने कहा था कि ट्रंप को संयुक्त राष्ट्र में दिए गए अपने भाषण के परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र में दिए गए अपने भाषण में कहा था कि अगर अमेरिका को अपनी रक्षा करनी है तो उसे उत्तर कोरिया को पूरी तरह नष्ट करना होगा। इसके अलावा दोनों नेता एक दूसरे को पागल और सनकी भी कह चुके हैं और एक दूसरे को कई बार भयानक परिणाम भुगतने की धमकी दे चुके हैं। इसी बीच चीन ने राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान का खंडन किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन के सभी बैंकों ने उत्तर कोरिया के साथ लेन देन बंद कर दिया है। विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि ट्रंप का बयान तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और इसे कम करने की दिशा में ठोस कदम उठते दिखाई नहीं दे रहे हैं। परमाणु संपन्न राष्ट्रों के प्रमुखों की तीखी बयानबाजी ने दुनिया भर में परमाणु युद्ध को लेकर चिंताएं पैदा कर दी हैं।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 6155, 7995, 9915 और 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी का प्रांतीय सम्मेलन हो रहा है। सम्मेलन में कुछ प्रस्ताव पारित होने हैं और प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। इसके बाद 5 अक्टूबर से आगरा में पार्टी की राष्ट्रीय टीम तैयार होगी, लेकिन इस सम्मेलन में सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि बैठक में मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव आते हैं या नहीं। सुनिए समीर आत्मज मिश्र की ये रिपोर्ट।
लखनऊ के रमाबाई अम्बेडकर मैदान को समाजवादी पार्टी के सम्मेलन के लिए कई दिन से तैयार किया जा रहा है। पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के नाम से द्वार बनाए गए हैं और उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक और कुछ दिन पहले तक अध्यक्ष रहे मुलायम सिंह यादव इस सम्मेलन की तैयारियों से दूर हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं से लेकर शहर भर में इस बात की चर्चा है कि सम्मेलन में मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव आएंगे या नहीं। पार्टी नेताओं के पास भी इस सवाल का जवाब नहीं है, या फिर ये कहिए कि जवाब देना नहीं चाहते। पार्टी प्रवक्ता जूही सिंह कहती हैं,
इस विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है क्योंकि हर जिले से डेलीगेट्स को 15% डेलीगेट्स को पार्सल इश्यू हुए हैं, तो हम लोग भी पार्टी के सदस्य के रूप में जा रहे हैं। वो लोग नेतृत्व है, नेताजी की पार्टी है, जरूर उनको आना चाहिए, लेकिन मैं आधिकारिक रूप से कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है ये नहीं बता सकती, क्योंकि जो हम लोग के पास प्रोग्राम आया है उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भाषण से शुरू हो रही है राष्ट्रगान के बाद प्रदेश की बैठक, और प्रोफेसर रामगोपाल जी अंत में इसको संबोधित करेंगे बैठक को।
हालांकि जूही सिंह साफ तौर पर कुछ नहीं कह रही हैं, लेकिन उनकी बातों से ये जरूर लगता है कि मुलायम सिंह पार्टी में पहुंचे या न पहुंचे उनकी चिंता नहीं है। पिछले साल पार्टी को पारिवारिक कलह के चलते काफी नुकसान उठाना पड़ा था। इस बीच मुलायम सिंह यादव भी 25 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। समझा जाता है कि इसमें मुलायम सिंह और शिवपाल कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार श्रवण शुक्ल,
मुलायम को सीधे सीधे वो पार्टी से हटा देंगे ऐसा कहना मुश्किल है। ये 25 तारीख को जो मुलायम सिंह अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें रुख और काफी चीजें स्पष्ट हो जाएगी कि मुलायम का रुख क्या है, वो आखिर है किसके साथ, शिवपाल के साथ हैं या वो अखिलेश को अभी भी अंदर के अंदर फेवर करते हैं। अब देखने वाला ये होगा कि शिवपाल कितने दिन तक चुप बैठते हैं मुलायम की चुप्पी के ऊपर।
वहीं 5 अक्टूबर को एक दिन की पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आगरा में होने वाली है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष दोनों के ही फिलहाल बदलने की संभावना कम है, लेकिन जानकार कहते हैं कि 25 सितंबर को लोहिया ट्रस्ट में होने वाली बैठक में मुलायम सिंह कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं और निश्चित तौर पर अखिलेश गुट के लिए ये घाटे का सौदा होगा। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव भारत प्रशासित कश्मीर के दौरे पर गए थे और उन्होंने कहा था कि वो बिना शर्त सभी तबकों से बात करने के लिए तैयार हैं। सवाल उनसे करने चाहिए जो कि बातचीत के लिए तैयार नहीं है, पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा कि पहले भारत अपना तरीका बदले जिसके बाद बैठकर बात हो सकती है। बीजेपी के कड़े रवैये में आए बदलाव को किस तरह से देखा जा रहा है घाटी में, सुनिए माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
बीजेपी के नेशनल महासचिव राम माधव के इस बयान के बाद यहां के राजनीतिक गलियारों में कोई बड़ी हलचल तो नहीं है, ताहम माधव के बयान को विश्लेषक बेमाने भी नहीं बता रहे हैं। केंद्र में 3 साल पहले नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद अलगावादियों के साथ किसी भी तरह की बातचीत करने का बीजेपी आज तक विरोध करती आई है। जानकार कहते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पहले ही दिन से कश्मीर पर अलगावादियों के साथ बातचीत के हवाले से सख्त पॉलिसी इख्तियार कर रखी है। पहले आपको राम माधव का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर के हर हिस्सेदार के साथ बातचीत करने की बात कही है। राम माधव के बयान के बाद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और अलगावादी नेता मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने शुक्रवार को श्रीनगर की ऐतिहासिक जामा मस्जिद में जुम्मा नमाज के खुतबे के दौरान कहा कि वो भी कश्मीर समस्या का हल चाहते हैं, लेकिन भारत सरकार को पहले फौजी तरीका छोड़कर सियासी रास्ते पर चलना चाहिए जिसके बाद ही सभी पक्ष एक साथ मिल बैठकर बातचीत कर सकते हैं और कश्मीर की जनता की उमंगों के मुताबिक समस्या का हल ढूंढा जा सकता है।
और हम ये महसूस करते हैं कि हुकूमत हिंदुस्तान को अब अपनी पॉलिसी में तब्दीली लानी होगी। जो लोग मुज़ाकरात की बात करते हैं, जो लोग डायलॉग की बात करते हैं, जो लोग एंगेजमेंट की बात करते हैं, एक तरफ से वो एंगेजमेंट की बात करते हैं लेकिन दूसरी तरफ से आप देख रहे हैं यहां पर इंसानी हकूक की बेतरेज खिलाफ वर्जियां हो रही कासों की आड़ में।
वहीं विश्लेषक कहते हैं कि भारत सरकार बातचीत की बात तो कर रही है लेकिन इस बातचीत के लिए जमीनी सत्ता पर ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है जिससे ये लगे कि भारत सरकार कश्मीर समस्या को हल करने में संजीदा है। कश्मीर के वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक ताहिर मुहिद्दीन कहते हैं,
अब राम माधव जी ने कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है लेकिन इस सिलसिले में किसी तरह का कोई ग्राउंड वर्क होमवर्क देखने में नहीं आ रहा है, वो सिर्फ ये बयान दे रहे हैं कि बातचीत के लिए तैयार है।
विश्लेषक ये भी कहते हैं कि केंद्र सरकार के पास अभी कोई साफ पॉलिसी नहीं है कि वो कश्मीर पर किस तरह का शिफ्ट या रुख अपनाना चाहती है। गौरतलब है कि 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कश्मीर पर चर्चा के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी बीते दिनों जम्मू कश्मीर के 4 दिनों के दौरे पर थे जिस दौरान वो यहाँ कई राजनीतिक दलों से मिले। राजनाथ सिंह ने भी अपने जम्मू कश्मीर दौरे को प्रधानमंत्री के लाल किले से कश्मीर पर चर्चा के साथ जोड़ते हुए कहा कि वो प्रधानमंत्री की बातों को यहाँ कश्मीर में जमीन पर अमलाने के लिए तैयार हैं। राम माधव ने एक ऐसे समय में कश्मीर के अलगावादियों के साथ बातचीत करने की बात कही है जब कश्मीर में नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी या NIA ने कई अलगावादियों को हवाला चैनलों के जरिए पैसा लेने और कश्मीर में हालात बिगाड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया है। माजिद जहांगीर, BBC श्रीनगर।
BBC इंडिया बोल।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काबू में है कच्चे तेल की कीमत, फिर भी आसमान पर है पेट्रोल और डीजल के दाम। क्यों नहीं घट रहा है टैक्स का बोझ? क्यों GST से बाहर है पेट्रोलियम उत्पाद? کیا سرکار دے سکتی ہے لوگوں کو مہنگائی سے راحت؟ اس بار انڈیا بول میں انہی سوالوں پر ہوگی چرچا۔ کارکرم میں حصہ لینے کے لیے شنیوار 23 ستمبر شام 7:30 بجے مفت فون کریں 1811-7000 یا 1811-7001 پر۔
بی بی سی انڈیا بول۔
اور اب کارکرم میں اخباروں کی سرخیاں اور پنے پلٹنے کا وقت آ گیا۔ دل نواز، اخبار کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت سارے اخبار آپ نے
جی موہن لال، تھوڑے تھوڑے بھیگے بھیگے سے آئے ہیں آج کے اخبار۔ باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے اور بہت سے ہمارے شروتا جہاں ہیں وہاں بھی شاید ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے۔ اور دا ٹائمس آف انڈیا نے کل دلی میں چھائی گھٹاؤ کی ایک منورم تصویر پہلے پنے پر چھاپی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جو دھیان کھینچ رہی ہے سبھی اخباروں میں ہے، سنیکت راشٹر میں بھارت نے پاکستان کو ٹیررستان کہا ہے اور بھارتی اخبار اسے سنیکت راشٹر میں بھارت کی جیت بتا رہے ہیں۔
میں دیکھ رہا ہوں سارے اخباروں کی ہیڈ لائن موٹے طور پر یہی ہے کہ پاکستان اب ہے ٹیررستان۔
ساتھ ہی انم گمبھیر جو سنیکت راشٹر میں بھارت کی سچیو ہیں، ان کی تصویر ہر اخبار کے پہلے پنے پر ہے اور انہوں نے ہی یہ بیان دیا تھا۔ اس کے علاوہ بھارت کے سپریم کورٹ نے راجیوں سے کہا ہے کہ گورکشا کے نام پر ہوئی ہنسا میں جو پربھاوت پریوار ہیں ان کو معاوضہ دیا جائے اور ایسی ہنسا کرنے والے لوگوں کو سزا دی جائے۔ یہ نوٹس بھارت کے سپریم کورٹ نے 22 راجیوں کو دیا ہے۔ یہ خبر بھی الگ الگ اخباروں کے پہلے پنے پر ہے۔ گروگرام میں جو پردیمن ہتیا کانڈ ہوا تھا، ریان انٹرنیشنل اسکول میں ایک بچے کی ہتیا کر دی گئی تھی، اس معاملے میں سی بی آئی نے جانچ شروع کر دی ہے۔ یہ خبر بھی آج لگ بھگ سبھی اخباروں میں پہلے پنے پر ہے۔ اور دا ہندو بتا رہا ہے کہ 2012 میں دلی میں ہوئے چرچت گینگ ریپ کانڈ نربھیا کانڈ کے بعد جو نربھیا اسکیم چالو کی گئی تھی اس کا بہت زیادہ اثر نہیں دکھ رہا ہے، وہ پوری طریقے سے پٹری سے اتر گئی ہے، یہ دا ہندو اخبار کہہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ دا انڈین ایکسپریس بتا رہا ہے کہ بھارت سرکار نے اسٹارٹ اپس کے لیے جو فنڈ جاری کیا ہے، 10,000 کروڑ روپے کا فنڈ جاری کرنے کی بات کی تھی، اس میں سے ابھی تک صرف 70 کروڑ روپے کا ہی استعمال ہوا ہے۔
مطلب اور بہت سوچنے والی بات ہے کہ 10,000 کروڑ روپے میں سے صرف 70 کروڑ روپے۔
جی، اور پردھان منتری نریندر مودی نے اسٹارٹ اپ انڈیا کو بڑے زور شور سے شروع کیا تھا، لیکن اخبار بتا رہا ہے کہ اس کی رفتار بے حد دھیمی ہے۔ اس کے علاوہ جو دینک جاگرن میں دیکھ رہا ہوں، بھاگتے ہوئے اسکولی بچے اسکول جا رہے ہیں، اور ہماچل پردیش پہنچے بھاجپا ادھیکش امت شاہ نے ہنکار بھری ہے، دینک جاگرن یہ بتا رہا ہے۔
بہت بہت شکریہ دل نواز پاشا۔ وقت ہے وویچنا کا۔ سال بھر پہلے اڑی حملے کے بعد بھارتی کمانڈوز نے نینترن ریکھا پار کر پاکستان ادھکرت کشمیر میں چرمپنتھیوں کے ٹھکانے پر سرجیکل اسٹرائک کر 40 چرمپنتھیوں کو مارنے کا دعویٰ کیا تھا۔ پاکستان نے اس کا زوردار کھنڈن کیا اور کہا کہ اس طرح کا کوئی حملہ ہوا ہی نہیں۔ پچھلے دنوں شیو ارور اور راہل سنگھ کی کتاب پرکاشت ہوئی ہے، انڈیاز موسٹ فیئرلیس ٹرو اسٹوریز آف ماڈرن ملٹری ہیروز، جس میں سرجیکل اسٹرائک کا وورن پہلی بار عام لوگوں سے ساجھا کیا گیا ہے۔ ریحان فضل نظر دوڑا رہے ہیں سال بھر پہلے ہوئی سرجیکل اسٹرائک پر۔
کل بھارتیہ سینا نے سرجیکل اسٹرائکس لانچ پیڈز کے اوپر کیے ہیں۔ ان کاؤنٹر ٹیررسٹ آپریشنز کے دوران آتنکوادی اور ان کے سمرتھکوں کو بھاری نقصان پہنچایا گیا ہے اور کئیوں کو ادھر مار گرایا گیا ہے۔
جب 29 ستمبر 2016 کو بھارت کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز لیفٹیننٹ جنرل رنویر سنگھ نے ایک سمواددات سمیلن میں یہ گھوشنا کی تو بھارت کیا پوری دنیا اسے سن کر اواک رہ گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس سے پہلے بھی لائن آف کنٹرول کے پار سرجیکل اسٹرائکس نہ کی گئی ہوں، لیکن یہ پہلی بار تھا کہ بھارتیہ سینا دنیا کو صاف صاف بتا رہی تھی کہ واستو میں اس نے ایسا کیا تھا۔ انڈیاز موسٹ فیئرلیس ٹرو اسٹوریز آف ماڈرن ملٹری ہیروز کے سہ لیکھک راہل سنگھ بتاتے ہیں۔
ریحان، اس کی شروعات ہائیسٹ لیول سے ہوئی تھی۔ ہم نے بہت سارے جنرل سے بات کی ہے، اسپیشل فورسز کے آفیسر سے بات کی ہے، بہت سارے لوگ جو اس آپریشن کا حصہ تھے ان سے بات کی ہے۔ ایک بات تو طے تھی کہ سب کے دماغ میں یہ تھا کہ یہ کوئی چھوٹی حرکت نہیں ہے جو اڑی میں ہوئی ہے، اور اس کا کچھ نہ کچھ ریاکشن بڑے طور پہ دیا جائے گا۔ پر یہ نہیں پتا تھا کہ مودی سرکار یہ پرمیشن دے گی، جو کہ ایک ہر ایک اسپیشل فورسز آفیسر کا سپنا ہے کہ میں کچھ اس ٹائپ کا آپریشن کروں جس کے پیچھے سرکار کا پورا وزن ہے۔ تو جو سب کچھ ہوا وہ ٹاپ سے ہوا تھا، ایک دم ٹاپ سے، اونلی آن نیڈ ٹو نو بیسس۔ بہت کم لوگوں کو اس کے بارے میں پتا تھا، اور ناردرن کمانڈ ہے ادھمپور میں، انہوں نے آپشنز دیے تھے کہ ہم ایسے کر سکتے ہیں، ایسے کر سکتے ہیں، ایسے کر سکتے ہیں، اگر ہم اتنا اندر جاتے ہیں تو ہمارا اتنا نقصان ہو سکتا ہے، اگر ہم تھوڑا کم اندر جاتے ہیں ہمارا کم نقصان ہو سکتا ہے۔ تو وہ سارے آپشنز کو پھر टॉप लेवल्स पे, प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे, NSA के लेवल पे, आर्मी चीफ के लेवल पे, उस लेवल पे वो सारे ऑप्शंस को स्टडी किया गया बहुत ही माइन्यूट तरीके से और फिर ये फैसला लिया गया।
सीमा पार पृथकतावादियों के लॉन्च पैड्स को ध्वस्त करने की जिम्मेदारी एलीट पैरा SFK-2IC मेजर टैंगो को दी गई। ये उनका असली नाम नहीं है। सुरक्षा कारणों से इस पूरी किताब में उन्हें उनके इस ऑपरेशन के दौरान रेडियो नाम मेजर माइक टैंगो के नाम से चित्रित किया गया है। मैंने इंडियाज मोस्ट फियरलेस के लेखक शिव अरूर से पूछा कि भारतीय सेना में SF यानी स्पेशल फोर्सेस है क्या चीज।
स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर को बोलते हैं क्रेम डेला क्रेम ऑफ द सोल्जर्स। सबसे फिट, सबसे सर्वाइवेबल, सबसे स्ट्रॉन्ग, मैक्सिमम मेंटल डेक्सटेरिटी, सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, लाइफ एंड डेथ सिचुएशंस में क्विकेस्ट डिसीजंस करना, बीइंग एबल टू सर्वाइव द लॉन्गेस्ट, यू नो, जिंदा रहना इन अ खतरनाक सिचुएशन। रेगुलर मिलिट्री जो होता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो होते हैं डिफेंस के लिए। स्पेशल फोर्सेज दे आर हंटर्स, वो ऑफेंस के लिए है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव किसी पे हमला करना, अटैक करना या कुछ मिशन कंप्लीट करना।
सवाल उठता है कि इस फैसले की पहल उत्तरी कमान या स्पेशल फोर्स की तरफ से हुई या दिल्ली में सेना के नेतृत्व या सरकार की तरफ से।
ये एक जॉइंट डिसीजन था। देखिए, पैरा स्पेशल फोर्सेस जो होते हैं कश्मीर में वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है ऐसे मिशंस के लिए। जब वो ट्रेन करते हैं, जब वो वॉर गेमिंग करते हैं, वो ऑलरेडी एक्सट्रीम वर्स्ट केस सिनेरियोज के लिए ट्रेन करते हैं। और वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है इसके बियॉन्ड? क्रॉसिंग द लाइन ऑफ कंट्रोल बियॉन्ड इनटू एनिमी टेरिटरी और वहां पे हमला करना।
28 सितंबर की रात दिल्ली में भारतीय कोस्ट कमांडर्स का वार्षिक भोज हो रहा था, लेकिन सभी चोटी के मेहमान रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और जनरल दलबीर सिंह ने अपने मेजबानों से माफी मांगी और सेना के मिलिट्री ऑपरेशन रूम पहुंच गए ताकि उस समय शुरू हो चुके इस अभियान को दिल्ली से मॉनिटर किया जा सके। माइक टैंगो के नेतृत्व में 19 भारतीय जवानों ने 26 सितंबर की रात 8:30 बजे अपने ठिकानों से पैदल चलना शुरू किया। 25 मिनटों में उन्होंने LOC को पीछे छोड़ दिया। टैंगो के हाथ में उनकी M4AI 5.56 mm की कार्बाइन थी। उनकी टीम के दूसरे सदस्य M4AI के अलावा इसराइल में बनी हुई टेवर टार 21 असॉल्ट राइफलें लिए हुए थे।
चॉपर्स का ऑप्शन था ही नहीं क्योंकि LC जो है वहां पे तो सेनाएं तैनात हैं दोनों तरफ से। ये नहीं कि उनकी साइड पे तैयारियां नहीं है, तैनात नहीं है। बहुत ही सीक्रेटली सीक्रेट तरीके से वो लोग अंदर गए। उन्होंने अंदर जाके फिर सर्वेलेंस किया अपने टारगेट्स का, देखा वहाँ क्या मूवमेंट हो रही है। कई घंटे चलना पड़ा है इनको। और बात जो बहुत मज़ेदार बात है वो ये है कि सब अखबारों में, टीवी चैनल्स में ये आया था हमारी किताब को लेकर कि सर्जिकल स्ट्राइक्स करना तो उतना मुश्किल नहीं था जितना कि वापसी थी। क्योंकि जब आप अंदर जा रहे हैं तो अब तो आपने सरप्राइज मेंटेन कर रखा है, दुश्मन को पता नहीं है आप आ गए। बट जब वहाँ गोलियाँ बरस रही हैं, ग्रेनेड्स चल रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर्स चल रहे हैं, तब तो सारी पाकिस्तानी पोस्ट्स अलर्ट हो गई।
लक्ष्य से 1 किलोमीटर पहले टैंगो ने अपनी टीम को 2 हिस्सों में बांट दिया। 200 मीटर पहले अचानक उन्हें फायरिंग की आवाज सुनाई दी। लेकिन टैंगो के अनुभवी कानों ने अंदाजा लगा लिया कि ये एक अंदाजे से की गई फायरिंग है और इसका निशाना उनकी टीम नहीं है। टैंगो ने तय किया कि वो उस इलाके में छिपे रहेंगे और अपना हमला 24 घंटे बाद यानी अगले दिन रात के अंधेरे में बोलेंगे।
ये मोस्ट सेंसिटिव और मोस्ट डेंजरस फेज था ऑपरेशन का। डेलाइट में ऑपरेशनल एरिया हॉस्टाइल टेरिटरी में सर्वाइव करना, अंधेरे में तो मुश्किल तो है ही, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल तो है ही। क्योंकि याद करिए कि इस चैप्टर में माइक टैंगो ये भी बताते हैं कि 8 पाकिस्तान आर्मी पोस्ट थे उस जगह में जिनका साइट डायरेक्टली उस एरिया में था। मतलब बाइनोक्यूलर्स या थर्मल इमेजेस जो भी था उनका साइट डायरेक्टली उसी एरिया में था, अंधेरे में। तो सोचो कि डेलाइट में कितना ज्यादा खतरनाक होता उनका सर्वाइवेबिलिटी।
पूरे 24 घंटे बाद लॉन्च पैड से 50 गज की दूरी पर मेजर टैंगो ने अपने नाइट विजन डिवाइस से 2 चरमपंथियों को पहरा देते हुए देखा। टैंगों ने 50 मीटर की दूरी से निशाना लिया और एक ही बर्स्ट में दोनों चरमपंथियों को धराशायी कर दिया।
उन्होंने जो फर्स्ट शॉट फायर किया था माइक टैंगो ने किया था, और जब हम बात कर रहे थे तो वो हमको बता रहे थे कि जो माहौल में टेंशन होती है वो सिर्फ तब तक होती है जब तक फर्स्ट शॉट फायर नहीं होता है। फर्स्ट शॉट फायर हो गया, कांटेक्ट हो गया, इसके बाद पता है हम इनको खत्म कर देंगे।
मार्क्समैनशिप बहुत जबरदस्त थी, दोनों गिरे पहले ही शॉट में।
बिल्कुल, पहले ही शॉट में गिरे।
इसके बाद तो गोलियों की बौछार शुरू हो गई। अचानक टैंगो ने देखा कि दो चरमपंथी जंगलों में भागने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो भारतीय सैनिकों पर पीछे से हमला कर सकें। टैंगो ने अपनी बेरेटा 9mm सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल निकाली और 5 फीट की दूरी से उन चरमपंथियों पर फायर कर उन्हें गिरा दिया।
उनके पास डिस्पोजेबल रॉकेट लॉन्चर्स थे और सारे सोल्जर्स के पास नाइट विजन गॉगल्स भी थे। माइक टैंगो का टीम नाइट अटैक में ट्रेन थे। वो आई थिंक 4 या 5 बुलेट से फाइटिंग शुरू हुआ था और बिल्कुल 1 घंटे बाद सब कुछ खत्म था।
इस पूरे ऑपरेशन में 38 से 40 चरमपंथी और 2 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। अब टैंगो के सामने चुनौती थी कि किस तरह वापस सुरक्षित भारत की सीमा में पहुंचा जाए, क्योंकि अब तक पाकिस्तानी सैनिकों को उनकी उपस्थिति का पता चल चुका था।
जब हमने माइक टैंगो से बात की, उसने हमको बताया, उन्हीं के शब्दों में आपको बता रहा हूं, वो कहते हैं कि अगर मैं थोड़ा कई इंच और लंबा होता तो आपके साथ बैठ के आज बात नहीं कर रहा होता। उन्होंने वापस आते हुए एक बड़ा ही सर्किटस रूट लिया, लंबा रूट लिया, मतलब और आगे जाके फिर घूम के वो वापस आए। जो रिटर्न था वहां से, वो एक बहुत ही मुश्किल काम था जो हमारे स्पेशल फोर्सेस के सैनिकों ने बड़े आराम से किया। माइक टैंगो के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वो चाहते थे कि उनकी टीम जितने लोग गए उतने खुद चलकर वापस आए, और वही हुआ। दुनिया के सबसे बेहतरीन सोल्जर्स में माने जाते हैं इंडिया के स्पेशल फोर्सेस, मरून बरेज भी इनको कहते हैं प्यार से लोग। पर जब दुश्मन को पता है कि यहां से लोग वापस जा रहे हैं, आप कितनी ही वेल ट्रेन्ड हो, गोली नहीं देखती आपने कितनी ट्रेनिंग की है नहीं की है। तो मैं कहूंगा इसमें थोड़ा बहुत भाग्य का भी हाथ था कि किसी को भी गोली नहीं लगी। माइक टैंगो बता रहे थे कि गोलियां कान के पास से जा रही थी, कहते जब कान के पास से गोली जाती है तो ऐसी आवाज आती है पट पट, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मौत के कितने नजदीक थे ये जांबाज सिपाही हमारे साथ।
पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक के भारत के दावे को सिरे से नकार दिया। वापस लौटने पर मेजर टैंगो को हेलीकॉप्टर से 15 कोर के मुख्यालय ले जाया गया, जहां कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ ने उनका स्वागत किया।
जब वो गए तो ऑफ कोर्स सीनियर ऑफिसर्स ने उनकी बहुत वाहवाही की, उनकी पीठ थपथपाई कि इतना बड़े मिशन को अंजाम देकर आए हैं। जैसे ही वो वहां पहुंचे, ट्रे में एक आदमी उनके लिए ब्लैक लेबल और खाली ग्लासेस लेकर आया। जनरल दुआ साहब ने बोला उसको कि अरे तुम ग्लासेस क्यों लेकर आए हो, तुमको पता नहीं है स्पेशल फोर्सेस वाले ये ग्लास को खा जाते हैं, ये असली में ग्लास को खा जाते हैं, ये कहानी नहीं है, इनको वो टेक्निक आती है, ये ग्लास को काट के खा सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि इनको तो हम सीधा बोतल से पिलाएंगे। फिर उन्होंने माइक टैंगो को बोला कि मैं तुम्हारे मुंह में ब्लैक लेबल पोर करूंगा, तो काफी पी गए काफी पिला दी। उसके बाद जनरल दुआ ने माइक टैंगो को बोला, ऐसे नहीं कि मैं जनरल हूं और मैंने तुमको वैसे पिला दिया, अब तुम भी मुझे ऐसे ही पिलाओगे। फिर माइक टैंगो ने जनरल साहब को वैसे ही ब्लैक लेबल पिलाई।
20 मार्च 2017 को सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली टीम के 5 सदस्यों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर टैंगो को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। उस समय उस बात का ज्यादा प्रचार नहीं किया गया कि कीर्ति चक्र पाने वाले और कोई नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक के हीरो मेजर माइक टैंगो है। रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
और यहीं पर आपको बताना जरूरी है कि रेहान फजल की विवेचना की यदि आप सारे अंक रिकॉर्ड करना चाहें, सुनना चाहें, तो bbchindi.com पर पॉडकास्ट में आइए और यहां पर आपको विवेचना के अलावा बाकी रेडियो के प्रोग्राम भी मिलेंगे जिन्हें आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, सुन सकते हैं। कार्यक्रम में इससे पहले आपसे विदा लें, मुख्य समाचार।
अमेरिका और उत्तर कोरिया के नेताओं के बीच तीखी हो रही जबानी जंग को रूस ने स्कूली बच्चों की लड़ाई बताया है। रूसी विदेश मंत्री ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि गर्म दिमागों को शांत किया जाए और यह समझा जाए कि ठहर कर विचार करने की जरूरत है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने ब्रिटेन की क्रेडिट रेटिंग को और कम करते हुए कहा है कि सरकार की कर्ज कम करने की योजनाएं सही रास्ते पर नहीं हैं और यूरोपीय संघ से अलग होने की वजह से आर्थिक अनिश्चितता का माहौल है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही है। स्टूडियो संभाल रहे थे तिलक राज भाटिया। शाम को 7:30 बजे बीबीसी इंडिया बोल लेकर हाजिर होंगे। मोहनलाल शर्मा को विदा दें, नमस्कार।